हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधमाधव कुंज बिहारी गोपजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा जमुना तीरावन चारी जमुना जमुनावन चारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय
जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्यमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्यमदभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत इस श्रवण यात्रा में या श्रवण उत्सव में। आशा करते हैं आप सबको स्थान अच्छा लगा होगा। किसी को अच्छा नहीं लगा हाथ ऊपर कीजिए। आप सबके रहने की व्यवस्था ठीक ठाक है? कोई तकलीफ, कोई कष्ट आने में, कोई कष्ट? हाँ, कुछ लोग लेट हो गए थे तो थोड़ा सा कष्ट हो गया। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि वैरागियों के साथ साथ, ब्रह्मचारी सन्यासियों के साथ साथ गृहस्थ भक्त भी कृष्ण भावनामृत में बहुत आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद जी ये समझाना चाहते थे कि भक्ति ये किसी एक विशेष समुदाय या किसी एक विशेष वर्ण के लिए नहीं है, भक्ति सबके लिए है। और विशेष करके गृहस्थ भक्तों के लिए, क्योंकि साधारणतः भारत में ये माना जाता है कि भक्ति, भगवान की पूजा, ये वैरागियों का काम है। जो लोग घर को त्याग दें, सन्यास ले लें, वे भगवान की भक्ति करें, क्योंकि उनको दूसरा कोई काम नहीं है। और जो गृहस्थ भक्त हैं वो तो घर में रहें, घर के कार्य करें, संसार चलाएं, संतानों को पालें, बड़ा करें, उनकी संतानों को पालें, और फिर जब बूढ़े हो जाएं, जब घर में कोई काम करने के लायक नहीं रहें, जब घर वाले उनको बाहर ही निकालने वाले हों, तब भगवान की भक्ति प्रारंभ करें, है ना? इसीलिए लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। ये क्या, अभी अभी युवा अवस्था में अभी कॉलेज जा रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो? नहीं नहीं, बूढ़े हो जाओ, सारे कर्तव्य करने के बाद भक्ति करनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भक्ति कर्तव्य नहीं है, ऐसा मानते हैं वो। जब आप सारे कर्तव्य करना चाहते हो तो भक्ति क्यों नहीं? इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम सारे अपने कर्तव्य करके फिर भक्ति करेंगे। नहीं, प्रभुपाद जी चाहते थे हर अवस्था में, चाहे युवा अवस्था में हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, सब भक्ति करें। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि भक्ति केवल ब्रह्मचारियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है। भगवान कहते हैं मैं तो सबका पिता हूं। सर्व योनि शुकौंतेय मूर्तया संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा पिता। ये नहीं कहा कि मैं केवल कुछ वैरागियों का पिता हूं, ऋषि मुनियों का पिता हूं, गृहस्थों का पिता नहीं हूं। सर्व योनि शुकौंतेय, किसी भी योनि में जीव क्यों नहीं है, फिर वो चाहे जानवर ही क्यों ना हो, भगवान उसके भी पिता है। इसीलिए जानवरों को मारा नहीं जाता। क्यों नहीं मारा जाता किसी भी प्राणी को? क्योंकि वो भी भगवान की संतान है। ये मानना गलत है कि केवल मनुष्यों को मारना अपराध है। दुर्भाग्य की बात है कि देशों में कानून बनते हैं, और अगर आप किसी मनुष्य को मारिए तो इतनी बड़ी प्रक्रिया करके आपको दंड दिया जाता है, लेकिन आप सड़क पर चलते हुए कुत्ते को मार दीजिए, कोई दंड नहीं देता। आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए एक बकरे को मार दीजिए, कोई दंड नहीं है, आपको मर्डर का दंड नहीं दिया जाता। कितनी दुर्भाग्य की बात है। वो भी जीव है, वो भी भगवान की संतानें हैं, तो भले ही देश दंड नहीं देता, कानून दंड नहीं देता, संविधान दंड नहीं देता, प्रकृति दंड देती है, क्योंकि प्रकृति के नियम सबके लिए हैं। प्रकृति भेद नहीं करती है, प्रकृति दंड देती है। इसीलिए गृहस्थ भक्तों को भी भक्ति करना बहुत आवश्यक है, और कैसे भक्ति करना ये हमें सीखना चाहिए, जिसमें श्रवण सबसे पहले है। आप सबको हम अपहरण करके इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप श्रवण करें। कारवार में तो आपका ध्यान होता है कि बस घर जाना है, समय हो गया, अंधेरा हो रहा है, अभी जल्दी से चले जाएं, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। यहाँ कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, आपका घर दो कदम पर है, तो रात को 12 बजे तक भी कथा चले तो सुन सकते हैं, और तैयार रहिएगा, हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि इस यात्रा के कोई नियम नहीं है। इस यात्रा में एक ही नियम है, श्रवण। तो अगर श्रवण रात को 12 बजे तक चले तो आप लोगों को भी बैठकर सुनना है, भले सो जाइए लेकिन रूम में नहीं जाना है, यही बैठकर सोना है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि श्रवण आवश्यक है भक्तों के लिए। और श्रवण से क्या होता है, जब हम श्रवण करते हैं भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तो भागवत कहता है कि हृदय में जो अनर्थ हैं, हृदयंतस्थ ही भद्राणी विधुनोति सुहत्सताम श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा। केवल कृष्ण की कथा सुनने से, जब हमारे कानों से होकर हमारे हृदय में जाती है तो शुद्ध कर देती है, इसीलिए श्रवण करना चाहिए। और देखिए, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पद पर रहते हुए लोग श्रवण करना चाहते हैं, बड़े बड़े देवता श्रवण करना चाहते हैं। विदुर, विदुर जी का नाम सुना है आपने, वो कौन है, यमराज। अब यमराज इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें श्रवण का अवसर नहीं मिलता, कहाँ श्रवण करेंगे, अपनी यमपुरी छोड़कर आ नहीं सकते, और यमलोक में बहुत व्यस्त रखते हैं हम लोग उन्हें, बेचारों दंड दे देकर थक जाते हैं, वो भी सेवा है भगवान की वो करते हैं, तो कितने व्यस्त रहते हैं आप सोचिए। सारे ब्रह्मांड से लोग आ रहे हैं, उनको कहाँ भेजना, क्या करना, फिर शायद यमदूत आकर बोलते रहते होंगे कि अरे अरे वो कढ़ाई में तेल खत्म हो गया, क्या करें, वहाँ का वो 100 मनुष्य खड़े हैं, उनको तलना है अभी, है ना। हम लोग तो यहाँ कहते हैं पकौड़ा तलना है, तेल खत्म हो गया, वहाँ मनुष्य तलने हैं। जिस तरह हम लोगों को, हम लोग यहाँ पकौड़ा तलते हैं वो फूल जाता है, ऐसे ही जब दंड मिलता है वहाँ तो मनुष्यों को फेंका जाता है। तो यमराज के लिए कितना व्यस्त है, तो यमराज भी जब श्रवण करना चाहते हैं तो वो विदुर के रूप में इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आकर भी उन्हें चैन नहीं मिलता, वो व्यस्त हो जाते, मंत्री बन जाते हैं, और फिर जब युद्ध प्रारंभ होता है तो उस समय उनका अपमान होता है। दुर्योधन कहता है ये हमारे पैसों पर, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति ये शत्रु पक्ष का है, निकाल दो इसे यहां से बाहर। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बचपन से, वो तो भाई थे धृतराष्ट्र और पांडु के, और जन्म से उन्होंने हस्तिनापुर के लिए कार्य किया, हस्तिनापुर को अच्छा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह देते रहे ताकि राज्य अच्छा चले, जिसको अपना मानते थे राज्य, अपना घर मानते थे। दुर्योधन कहता है निकाल दो बाहर इसे, ये धोखेबाज है, ये शत्रु से मिला हुआ है। आप सोचिए विदुर जी को कितना दुख हुआ होगा, लेकिन विदुर ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि अब उन्हें श्रवण का अवसर मिला। विदुर जी गए नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां से छोड़ के किसी और राजा के पास चले गए कि मैं अब आपके पास रहूंगा, नहीं, तुरंत तीर्थ यात्रा पर चल दिए और वहां उन्होंने श्रवण किया। मैत्रेय मुनि से मिले, बहुत जगह घूमते घूमते उद्धव से मिले, और तब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध समाप्त तो हो गया, श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए। और जब उन्होंने प्रश्न किए उस समय एक बहुत सुंदर बात हुई। उद्धव ने विदुर जी को बताया कि श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ने से पहले आपका स्मरण किया था। विदुर सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए कि ऐसी क्या बात थी। श्री कृष्ण ने बहुत लोगों का स्मरण नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव से विदुर की चर्चा की। तो जब विदुर को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम से, आप जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो दो लोगों से मिले थे, एक थे उद्धव और दूसरे थे मैत्रेय मुनि। ये दो लोगों को ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने केवल अपने धाम बस जाने के थोड़ा सा पहले, और ज्ञान देकर फिर चले गए। और उस समय उन्होंने विदुर का स्मरण किया। तो जब उद्धव ने ये बात बताई विदुर जी को, विदुर जी भावा विभोर हो गए कि कृष्ण ने, भगवान ने जाने से पहले मेरा स्मरण किया। तो क्या कहा बताइए, क्या ज्ञान दिया, क्या कहना चाहते थे? तो उद्धव ने कहा मैत्रेय मुनि के पास जाओ, वो बताएंगे। और फिर विदुर मैत्रेय मुनि के पास आते हैं और बैठकर श्रवण करते हैं। मैत्रेय मुनि से कहते हैं आप बस सुनाइए मुझे। बहुत से प्रश्न किए और एक बहुत सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, क्रीडन विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनोनत्रत्यत्यपि शृण्वतां सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। वो विदुर जी कहते हैं मैत्री मुनि से कि आप रुकिए नहीं, आप बोलिए। क्रीडान विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे, अलग अलग अवतारों की चर्चा कीजिए। भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे ये सृष्टि की रचना हुई है, इस सब का वर्णन कीजिए। और फिर मैत्री मुनि बहुत प्रसन्न होकर विदुर को ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। और मैत्री मुनि कहते हैं मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूं, अपने शुद्धिकरण के लिए। मैत्री मुनि ने नहीं कहा कि हाँ हाँ कृष्ण का संदेश है, मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति हूं तुम्हें दे रहा हूं, नहीं, अपने शुद्धिकरण के लिए मैं अब ये कथा कहूंगा, जो तुमने प्रश्न किया है उसका उत्तर। तो जब श्रवण हम करें तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, श्रवण के समय किस भाव में श्रवण करना चाहिए? क्या हमें सुनना चाहिए अहंकार से? क्या हमें सुनना चाहिए चुनौती देते हुए? कई लोग प्रवचन सुनते हैं केवल बोलने वाले की गलती ढूंढने के लिए। अब बोल रहे बोल रहे बोल रहे, हाँ यहां गलत हो गया। और फिर प्रवचन के बाद जब कहते हैं कोई प्रश्न तो वो कहते हैं हाँ तो आपने ऐसा कहा। तो ना तो हमें कोई चुनौती देने के लिए प्रवचन सुनना चाहिए, ना अहंकार से। किस भाव में सुनना चाहिए? जिस भाव में हम एक अस्पताल में जाते हैं। व्यक्ति कभी कभी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, तो क्या भाव होता है उनका? रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑफकोर्स आप लोग नहीं जाते हैं, या आप लोग जाते भी होंगे हमें नहीं पता, लेकिन जब जाते हैं तो क्या भाव होता है? आनंद लेने का, एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, अच्छा ये लाओ वो लाओ ये करो, और खाते हैं बस सब परिवार के साथ और आनंद लेकर आते हैं। लेकिन क्या व्यक्ति हॉस्पिटल में भी इसी भाव में जाता है आनंद लेने के लिए कि चलो घर पे थोड़ा बेड ठीक नहीं है, थोड़े दिन हॉस्पिटल में लेट कर आता हूँ। और फिर नर्स आती है मेनू लेकर, अच्छा कौन सा इंजेक्शन लेंगे आप, कौन से रंग की दवाई लेंगे, कौन सी आपको पसंद है, ये वाला अच्छा दिख रहा है ये वाली ले आओ। नहीं, अस्पताल में हम लोग जाते हैं निस्सहाय भाव में डॉक्टर के पास कि हमारी कोई शक्ति नहीं, आप बचा सकते हैं मुझे, निस्सहाय भाव में, और ये जानते हुए कि हम रोगी हैं। इसीलिए जाते हैं ना, अगर किसी को ये नहीं लगे कि मैं रोगी हूं तो वो अस्पताल जाएगा नहीं जाएगा, फिर वो आराम से घर में बैठेगा। इसी तरह जब हम श्रवण करने आते हैं तो हमारा भी यही भाव होना चाहिए कि मैं भौतिक दृष्टि से, मुझे भव रोग है, मैं बीमार हूं और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। देखिए, अगर इलाज हो बीमारी का तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, है ना। लोग ऐसे ही करते, जरा सा सर दर्द होता है दुकान पे जाते, दवाई खरीदते, खा लेते, खत्म, हॉस्पिटल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको इलाज पता है। लेकिन हॉस्पिटल तभी जाते हैं जब कोई इलाज पता नहीं है, क्या हो रहा है, बीमारी क्या है। तो इसी भाव से हमें श्रवण करना चाहिए कि पहली चीज मैं बीमार हूं और दूसरी चीज मेरे पास इसका इलाज नहीं है, इसीलिए मैं श्रवण करने आया। निस्सहाय भाव में, एक बीमार व्यक्ति के भाव में सहायता लेने के लिए हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण से श्रद्धा बढ़ती है। जब तक हम श्रवण नहीं करते हैं तब तक श्रद्धा नहीं आती है, लेकिन श्रवण हमारी श्रद्धा को बढ़ा देता है। इसीलिए जब प्रहलाद महाराज ने भक्ति की नवधा विधियों को दिया, नौ विधियों को, नवधा भक्ति मार्ग को, तो सबसे पहले श्रवण दिया। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। तो श्रवण कीर्तन, तो श्रवण सबसे पहला। प्रभुपाद भी कहते पहले सुनिए फिर तो बोल सकेंगे ना, बोलने के लिए सुनना चाहिए, इसलिए श्रवण आवश्यक है। और प्रभुपाद भी यही चाहते थे कि सारे गृहस्थ भक्त आए और श्रवण करें। मंदिरों को उन्होंने अस्पताल कहा। प्रभुपाद कहते थे कि हमारे मंदिर अस्पताल की तरह हैं, जहाँ पर व्यक्ति को आकर रोग से दूर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद सबको सेवा में लगाना चाहते थे। एक समय श्रील प्रभुपाद जी से मिलने एक बहुत बड़े व्यापारी आए, तो प्रभुपाद के साथ और भी लोग थे। तो जब ये व्यापारी आए, प्रभुपाद उनको मिलाने लगे सबसे कि ये इतने बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद से कि नहीं नहीं प्रभुपाद, आप मुझसे बड़े व्यापारी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। और ये सही भी था ना, प्रभुपाद कुछ 40 रुपए लेकर गए थे अमेरिका, करोड़ों रुपए बनाकर आए, उनसे बड़ा बिजनेसमैन और कौन हो सकता है। तो जब उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि नहीं नहीं प्रभुपाद, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप मुझसे अच्छा बिजनेस करते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा तो फिर आप भी मेरे बिजनेस में आ जाइए ना, वहां क्या कर रहे हैं मैं अच्छा कर रहा हूं ना, आप भी आ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं कोई बात नहीं, जहां हैं वहीं रहिए और आंदोलन की मदद करते रहिए। तो प्रभुपाद का उद्देश्य था कि हम सब भक्ति में लगें, चाहे वो गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, वानप्रस्थ हों, सन्यासी हों, और श्रवण करें। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक सुनते नहीं हैं, किसी चीज के महत्व को जान नहीं सकते। आपके सामने हीरे और कांच के टुकड़े को रखा जाएगा तो आप कैसे कहेंगे दोनों को देखकर कि कौन सा ज्यादा कीमती है? कोई कह सकता है? दोनों चीजें आपके सामने वैसे ही काट कर, एक शीशे के टुकड़े को भी काट कर रखा, कांच के टुकड़े को और हीरे को, लेकिन जब आप श्रवण करेंगे कोई बताएगा देखिए ये हीरा है, इसमें ऐसे ऐसे काटा जाता है, इससे ये होता है, तब आपको उसकी कीमत मालूम पड़ेगी, नहीं तो दोनों समान है। इसी तो श्रवण करने से हमें भक्ति का महत्व पता चलता है कि भक्ति क्या है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये हम श्रवण से जान लेते हैं। तो इसलिए श्रवण हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और इसी कारण से आप सबको यहाँ लेकर आए हैं, अपहरण करके आप सबको किडनैप किया है। देखिए भगवान कृष्ण कितने चतुर हैं। दूसरी जगह पे अगर किसी का किडनैप हो तो वो बेचारा नहीं 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 जाऊंगा, दूर रहने का प्रयास करता है। यहाँ आप लोग खुद पैसा खर्चा करके अपहरण होने के लिए आए हैं, बताइए, है ना? कृष्ण बड़े चतुर हैं। तो इसका कारण यही है कि हमें यहाँ श्रवण करना है कथा को। तो हमने सोचा कि आगे आने वाले 3 दिनों में भागवत के एक बहुत सुंदर प्रसंग को कहेंगे, ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज की कथा वैसे तो आप सब जानते होंगे, लेकिन ये वो कथा है जो चैतन्य महाप्रभु कई कई बार सुनते थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार वही कथा, और सुनाओ, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। तो ऐसा क्या है इस ध्रुव महाराज की कथा में जो चैतन्य महाप्रभु इतना सुनते थे? तो हम लोग भी प्रयास करेंगे थोड़ी बहुत शिक्षाएं उससे ग्रहण करने का। तो ध्रुव महाराज की लीला का क्या महत्व है इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला महत्व, ध्रुव महाराज की लीला हमें ये सिखलाती है कि हमें कैसे जीवन जीते हुए वैराग्य को उत्पन्न करना है। इस जगत में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए किस तरह से वैराग्य को उत्पन्न करना है, ये पहली शिक्षा या पहला महत्व है ध्रुव महाराज की कथा का। जैसे नारियल होता है, तो जब नारियल अंदर सूख जाता है, एकदम जो अंदर सफ़ेद भाग होता है वो एकदम सूख जाता है, उसको खोपरा कहते हैं ना, फिर सूखने के बाद, तो जब सूख जाता है तो अंदर होता है लेकिन वो जो उसकी अंदर जो नारियल का बाहर का जो भाग होता है उससे अलग हो जाता है। आप लोग जानते हैं, जैसे नारियल को रख दीजिए सूखने के लिए, तो जो पानी अंदर का सब सूख जाएगा, अंदर का नारियल भी सूख जाएगा सफ़ेद रंग वाला, तो वो अपनी जो शेल होती है उससे अलग हो जाता है, एकदम अलग, रहता उसी में है लेकिन अलग हो जाता है। इसी तरह ये सही वैराग्य है, भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत के नहीं होना, ये हमें सीखना है। भौतिक जगत में है लेकिन भौतिक जगत के नहीं है, ये बात को हमें सीखना है। तो ध्रुव महाराज की कथा से सबसे पहली शिक्षा हमें मिलेगी कि किस तरह से हम वैराग्य को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी शिक्षा, तपस्या की शक्ति, क्योंकि ध्रुव महाराज ने बहुत सी तपस्या की और उस तपस्या की शक्ति का प्रभाव हम लोग देखेंगे इस लीला में, और साथ ही साथ हम भी सीखेंगे कि तपस्या में कितनी शक्ति है, कैसी तपस्या हमें करनी है। ध्रुव महाराज की तरह तो हम नहीं कर सकते, है ना? ध्रुव महाराज ने कैसी तपस्या की? केवल सूखे पत्ते खा रहे हैं, फिर वो भी बंद कर दिया, पानी पी रहे हैं, पानी बंद कर दिया, हवा ले रहे हैं, हवा लेना बंद कर दिया, तो ऐसी तपस्या तो हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या तपस्या हमें करनी है और तपस्या की क्या शक्ति है? देखिए, जब व्यक्ति को तपस्या की शक्ति पता चल जाए तो तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है ना। जब तक आपको तपस्या की शक्ति नहीं मालूम, आप तैयार नहीं होंगे तपस्या करने के लिए। लेकिन आपको तपस्या की क्या शक्ति, क्या फल है उसका, वो पता चल जाए तो आप जरूर तपस्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए तपस्या में क्या शक्ति है, कुछ चीज को जान लेने से उसकी शक्ति का आभास हो जाता। जैसे मान लीजिए, हम कई बार उदाहरण देते हैं कि वैसे अगर आपसे कहा जाए कि रात भर जगना है, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तो शायद आप लोगों में से कोई उत्साही भक्त थोड़े बहुत होंगे, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, उसके बाद फिर पता चला 1-2 भक्त रह गए, है ना। हमें ध्यान है, बहुत पहले जब हम भक्ति में आए थे तो किसी के घर पर उन्होंने 24 घंटे का कीर्तन रखा था। तो हम आश्रम में थे तो सारे ब्रह्मचारियों को कहा जा रहा था कि उनकी सेवा 2-2, 3-3 घंटे सेवा करना, वहाँ जाकर कीर्तन होना चाहिए। तो हमसे आकर पूछा गया कि आपकी रात में सेवा रखेंगे, ठीक है ना, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह। हमने कहा हाँ, कोई तकलीफ नहीं, बड़ा उत्साह था, हाँ हाँ कोई तकलीफ नहीं। हमें पता नहीं था, दरअसल इसीलिए हमसे पूछा गया था क्योंकि जो लोग पहले जा चुके थे उनको पता था, इसीलिए किसी ने हाँ नहीं कहा था। हम कभी गए नहीं थे, रात को कीर्तन किया नहीं था, तो उन्होंने आके हमसे पूछा, हमने कहा हाँ जाएंगे। तो चले गए रात को बड़े उत्साह के साथ, 1 घंटा तो बड़े उत्साह से कीर्तन किया, 1 बजे तक। 1:30 बजने के बाद ऐसी आंखें बंद होने लगी, कोई कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, क्या हो रहा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बहुत नींद आने लग गई, जबकि कीर्तन चल रहा है। आप सोचिए, मृदंग बज रहा है, करताल बज रही है और हमें नींद आ रही है। 1:30 बज गया और 2 बजे तक तो हम बैठ ही नहीं पाए, 6 बजे तक करना था। तो 2 बजे तो पता नहीं किसी तरह उठकर चलने लगे। अब चलने तो बाकी लोग बोल रहे, अरे भाई बैठो कीर्तन करो, हमने कहा कीर्तन नहीं हो रहा है, तो होता नहीं है। लेकिन वही अगर आपको कहा जाए कि रात के ठीक 12 बजे शमशान में, जहां सन्नाटा है, आप वहां आइए, वो भी अमावस्या की रात को। लेकिन जब आप आओगे तो आपको 5 करोड़ रुपए का बैग देंगे फ्री, कुछ आपको करना नहीं है, 5 करोड़ रुपए आप ले जाइए, जो करना है उसका कीजिए, इस्कॉन मंदिर में दान कीजिए या कहीं और कीजिए, लेकिन कीजिए, ले जाइए। और आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको महीने में 5,000 रुपया कमाने में भी तकलीफ हो रही है, और अब 5 करोड़ रुपया, उसके लिए क्या करना है, रात को 12 बजे शमशान में सन्नाटा, आवाजें आ रही हैं, बस वहां जाके खड़ा होना। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, बताइए, जाएंगे? 5 करोड़ रुपया मिल रहा है, अरे 12 बजे छोड़िए, आप 10 बजे से अटेंशन में खड़े रहेंगे वहां पर कि कहीं वो व्यक्ति 12 बजने में 5 मिनट पे आ गया और चला ना जाए, 10 बजे से खड़े रहेंगे, है ना, कोई नींद नहीं। तब आपको नींद आएगी, मान लीजिए वो आदमी आके दे रहा है ये 5 करोड़, आप बोले 5 करोड़, सुनते ही नींद भाग जाएगी, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, अंधेरे में दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका महत्व पता है, क्योंकि हमें पता है कि बस 1 रात हमें तपस्या करनी है, जीवन सफल हो जाएगा तो हम कर लेंगे। फिर हम कुछ नहीं देखेंगे कि हमें गाड़ी नहीं मिली आने के लिए, कोई ऐसे नहीं कहेंगे ना कि बहुत दूर से आते हैं, गाड़ी नहीं मिली इसलिए आ नहीं पाए, आप ही रख लो 5 करोड़ रुपया, नहीं। तो ये श्रवण की, ये जब हमें पता चलेगा कि तपस्या कैसे होती है, उसकी क्या शक्ति है, तब हम बहुत अच्छी तरह से तपस्या कर सकते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि बहुत से लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं कष्ट लेकर, कुछ लोग तपस्या करते हैं प्रेम से, प्रेम की तपस्या भी होती है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को गर्भ में पालती है, 9 महीने तक। ऐसा नहीं कि उसे कष्ट नहीं होता, बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो प्रेम से पालती है, वो तपस्या प्रेम से करती है, उसको कोई जबरदस्ती नहीं है, बंदूक नहीं रखी जाती, वो प्रेम से करती है। तो कुछ तपस्याएं व्यक्ति प्रेम से करता है, कुछ जबरदस्ती करना पड़ता है। सो भक्ति की जो तपस्या है वो हम प्रेम से करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम है। तो ये दूसरी चीज हम ध्रुव महाराज की कथा से सीखेंगे। अगले 3 दिनों में यही सब चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से उसको श्रवण करेंगे। जैसे जैसे ध्रुव महाराज की कथा आगे बढ़ती जाएगी ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। तीसरी चीज़ ध्रुव महाराज की कथा से जो हम सीखते हैं वो है श्रद्धा का महत्व। ध्रुव महाराज ने श्रद्धा दिखलाई अपने माता के शब्दों में, नारद मुनि के शब्दों में, और उसका क्या प्रभाव हुआ। तो ये तीसरी चीज हम लोग इससे सीखेंगे। और चौथी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, और वो ये है कि दुखों से दूर जाने का व्यवहारिक मार्ग क्या है। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल, जो कर सकें, केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं। ध्रुव महाराज के जीवन में भी दुख थे ना, दुख आए, तो दुखों से दूर जाने का व्यवहारिक प्रक्रिया या व्यवहारिक मार्ग क्या है, ये हम लोग ध्रुव महाराज की कथा से सीखेंगे। और पांचवा, कैसे हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए। देखिए भक्ति क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है। भक्ति का मार्ग इतना ही है कि अभी जहाँ हमारी चेतना है साधना के साधना से, मार्ग से उसको ऊंचा उठाना। तो जब हम ऐसा करते हैं तब हम भगवान की ओर जा सकते हैं। कभी कभी हमें साधना करना, जप करना, भक्ति करना, ये बड़ा बोझ लगता है। रोज रोज वही, रोज वही, वही 16 माला, वही सुबह सुबह उठो, कभी कभी बोझ लगता है। लेकिन अगर इसके महत्व को जान ले तो बोझ नहीं लगेगा। तो कैसे अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है भक्ति में, ये हम ध्रुव महाराज की कथा से सीखते हैं। तो ठीक है, याद रहेगा आप सबको, कितने लोगों को याद है क्या क्या सीखते हैं ध्रुव महाराज की कथा से। ये भी एक चीज सीखते हैं कि याद रखना चाहिए। ध्रुव महाराज ने याद रखा ना, अगर ध्रुव महाराज भूल जाते नारद मुनि ने उन्हें क्या कहा तो कैसे तपस्या करते। तो अभी आप लोगों 5 चीजें हमने बताई हैं, ठीक है। तो 2 प्रभु जी और 3 माता जी इन 5 चीजों को बताएंगे, ठीक है। हाँ, माता जीयों की तरफ से भी 3 तैयार हो जाइए, और हम किसी से भी पूछ लेंगे, उनको बताना पड़ेगा। तो प्रभु जीयों में 2 हैं, यस, आप बताइए पहला। हाँ जी, हाँ, हाउ टू डेवलप डिटैचमेंट, हमें वैराग्य जीवन में कैसे उत्पन्न करना है। दूसरा, विश्वनाथ प्रभु बोलिए, श्रवण नहीं कर रहे हैं, ये साफ बताए। श्रद्धा, ओके, वैसे दूसरा कुछ और था, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। श्रद्धा कैसे, श्रद्धा का क्या महत्व है, तो 2 हो गए। अभी 3 माताजियों की तरफ से, अभी सब माताजियों के सर नीचे हैं, मेरी ओर नहीं देखना चाहिए, कहीं मुझे नहीं बोल दे बोलने के लिए, सिर नीचे होगा तो बोल ही नहीं सकेंगे। अच्छा, आप लोग अपने आप बोल दीजिए, आपको नहीं बोलेंगे। किनको, कौन बता सकते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, उनसे ही पूछेंगे। 3 आपको बताने, 2 क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है ना, इधर कम है थोड़ा। और क्या सीखते हैं हम लोग ध्रुव महाराज की कथा से, ऐसमत जी, दुख से कैसे, उसको दुख से दूर जाने का व्यवहारिक मार्ग, बहुत अच्छा। और 3 हो गए, और 2 बताने, एक एक एक, हाँ मत, मंगलम मत जी, चेतना को ऊपर कैसे लाना है। बहुत अच्छा, मुझे प्रसन्नता हुई, मंगला माता जी ने उत्तर दिया। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं माता जी, अच्छा है। और एक रह गया अंतिम, कौन बताएंगे? हाँ, साधना नहीं, नहीं नहीं, माता जी को, तीनों माता जी को बोला है। एक और रह गया, हाँ, तपस्या। यस, बहुत अच्छा। मंगला माता जी को 100 मार्क्स, ताली बजाने चाहिए। तपस्या, तपस्या की क्या शक्ति है। गुड, तो ये सब हम चीजें ध्रुव महाराज की कथा से सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखने के लिए थोड़ा अगर हो सके तो लिखिए, ताकि नहीं तो कल यही प्रवचन हम देंगे, आप बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छा है, फिर अगले दिन यही बोलेंगे तो भी बोलेंगे बहुत अच्छा है। ऐसा होता है, हमने एक बार एक जगह, एक ही उसी जगह उसी कार्यक्रम में एक प्रवचन दिया था, और ठीक 6 महीने बाद उसी जगह वही संडे प्रोग्राम में वही प्रवचन दिया, और लोगों ने बोला प्रभु जी क्या प्रवचन था। और फिर हमने उनको बताया, आप जानते क्या प्रवचन था, हमने कहा 6 महीने पहले यही यही शब्द बोले थे यहाँ पे। तो लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि कल हम यही बातें कहें तो आप बहुत अच्छा, परसों बहुत अच्छा, तो लिख लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम बता रहे थे कि विदुर और मैत्री मुनि का संवाद हुआ, उसमें ये कथा आती है। मैत्री मुनि ने बहुत सारे वर्णन किए, मैत्री मुनि ने वर्णन किए जगत कैसे बनता है, ब्रह्मांड कैसे बनता है, ब्रह्मा जी कैसे आते हैं, ये सारा वर्णन हुआ। और फिर अब ध्रुव महाराज की कथा बताने से पहले ब्रह्मा जी ने एक मार्ग दिया, कहाँ का मार्ग, पतन का मार्ग, कैसे व्यक्ति का नाश होता है, कैसे व्यक्ति नरक में जाता है, ये वर्णन ब्रह्मा जी ने, मैत्रेय मुनि ने किया। और उस वर्णन को करने के बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस वर्णन को अगर कोई 3 बार सुन लेता है या कहता है तो उसके जीवन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग एक बार कहेंगे, फिर आप में से कोई एक बार और इधर से एक बार, तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है ना। पतन का मार्ग, और अभी कोई दूसरे माताजियों को बोलना पड़ेगा, मंगला माताजी को 100 मार्क्स मिल गए हैं, अभी किसी और को, ठीक है। तो आप लोग अभी ध्यान से सुनिए, अगर इच्छा हो तो लिखिए कि हमारे पतन का क्या मार्ग है। तो वर्णन करते हुए वो बताते हैं, इस सृष्टि के निर्माण का वर्णन करते हुए वो कहने लगे कि ब्रह्मा जी से बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए, नारद, 4 कुमार इत्यादि। आप जानते हैं ना, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने कई पुत्रों को उत्पन्न किया, ताकि वो लोग आगे चलकर फिर और इस पृथ्वी को भर दें मनुष्यों से। तो नारद मुनि को उत्पन्न किए, पहले 4 कुमारों को किया, 4 पुत्र किए, और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे पुत्र, बहुत अच्छे हो, जाओ विवाह करो, तपस्या करो, विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो। तो जब उन 4 कुमारों ने सुना, बहुत छोटे थे उस समय, 5 वर्ष के बालक, और भी छोटे, तो जब उन्होंने सुना तो ब्रह्मा जी से कहा, अरे आप ब्रह्मा होकर जीवन का उद्देश्य नहीं जानते। ब्रह्मा ने कहा, क्या नालायक, मेरा बेटा होकर मुझे कह रहा है, जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कहा, नहीं सृष्टि तो छोड़ो, हम बड़े ही नहीं होंगे, हम ऐसे बच्चे ही रहेंगे, तो बड़े नहीं होंगे, विवाह नहीं करना पड़ेगा, और फिर संतान उत्पन्न नहीं, कोई चिंता नहीं। छोटे बच्चों को कोई चिंता होती है? बिल्कुल चिंता नहीं, है ना। जब तक हम लोग भी छोटे थे कोई चिंता थी? एक ही चिंता थी, वो मेरा खिलौना कहीं चला गया, या वो भी चिंता नहीं होती बच्चे को। सच में बच्चे बिल्कुल चिंताओं से मुक्त। हम एक बार शायद पहले भी आपको बता चुके हैं, हम बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी के साथ हम लोग सड़क पर कहीं थे दिल्ली में, तो वहाँ पर बहुत कुछ होता रहता है उत्तर भारत में। तो वहाँ एक व्यक्ति था, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो बीच में एक गाय को लेकर खड़ा था जिसके पीठ पर पैर था। आपने देखा नहीं, यहाँ भी कई लोग आते हैं, पीठ पर पैर होता है उस गाय को लेकर, की बड़ी शुभ गाय है। तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी ऐसे पूरे चारों तरफ, और वो बीच में था। और वो क्या दिखला रहा था, क्या बता रहा था? वो कह रहा था कि ये जो गाय है ये हर चीज बता सकती है, इसके पास हर चीज का उत्तर है। तो अच्छा, तो लोगों से कहा आप कोई भी प्रश्न पूछिए। लोग प्रश्न पूछ रहे थे, गाय जवाब, जवाब मतलब बोल नहीं रही थी, ये बता रहे थे। तो ऐसे करते करते उसने कहा देखिए अभी आपको एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखलाता हूं। तो हम और हमारे पिताजी खड़े थे, उन्होंने कहा पिताजी से आकर कि आप एक काम करो, अपने बच्चे को वहां खड़ा करो, आप कहीं जाकर छुप जाओ इस भीड़ में। बहुत सारी भीड़ थी, करीब 400-500 लोग होंगे वहां, तो आप भीड़ में छुप जाओ जाके। तो उन्होंने हमें वहां खड़ा कर दिया और वो चले गए। तो फिर वो गाय को लेकर आए और गाय हमारे सामने खड़े करके पूछा, गाय को बताओ इसके पिताजी कहाँ हैं। तो गाय आई हमारे पास, उसने सूंघा में और फिर चली गई। और हमारे पिताजी कहीं भीड़ में पीछे पीछे जाकर खड़े थे, उस वहां से सबको हटा के जाके हमारे पिताजी के सामने खड़ी हो गई, ये उसके पिता हैं। तो सब लोग ने बहुत तालियां बजाई, वाह 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 वा, वा, बहुत अच्छा। और फिर उसने एक प्रश्न किया गाय से, सब खड़े थे, उसने कहा इस सारी भीड़ में ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसको कोई चिंता नहीं है। और वो गाय हमारे पास आकर खड़ी हो गई। शायद उसको ट्रेन किया होगा कि जब ये प्रश्न करे तो छोटे बच्चे के पास चले जाना। और सच में उस दिन के बाद से बहुत सी चिंता हो गई, उस दिन तक कोई चिंता नहीं थी। बच्चों को कोई चिंता नहीं होती। तो चार कुमारों ने कहा ना भगवान ब्रह्मा जी से कि हम तो नहीं करेंगे विवाह। तो ब्रह्मा जी बहुत गुस्से में आ गए, ऐसा होता है ना, पिता को एक ही कामना होती है, मेरा बच्चा है या मेरी लड़की या लड़का जो भी है बड़ा हो, उसकी शादी हो, फिर उसके बच्चे हो, फिर उसके बच्चों को मैं खिलाऊं, यही सब कामना होती है। और यहाँ पर तो चार कुमारों ने शादी ही नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी का तो सारा वो भविष्य का प्लान चौपट हो गया कि उसके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे, फिर ब्रह्मा जी गोद में लेकर खिलाएंगे वगैरह, जो भी उन्होंने सोचा होगा। तो इसलिए बड़े क्रोध में आ गए, क्रोध के कारण शिव जी प्रकट हो गए ब्रह्मा जी से। तो ऐसे कई पुत्र हुए, नारद हुए, नारद को भी प्रकट किया, नारद से भी कहा जाओ विवाह करो, नारद ने भी मना कर दिया। नारद ने कहा रे कोई जीवन का कोई उद्देश्य है कि नहीं, ये मनुष्य जीवन क्या इसलिए मिला है? तो वो भी नहीं किए। तो ऐसे फिर उन्होंने 10 और पुत्र किए जिनको प्रजापति कहते हैं, जिन्होंने प्रजा की संरचना की। और ब्रह्मा जी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वर्णन हो रहा है उस पतन के मार्ग का। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि आप लोगों को भी बोलना है। मैत्री मुनि ने कहा 3 बार होना चाहिए, भागवत में लिखा है ये, तो एक बार हम कहेंगे, एक बार प्रभु जी इसमें से कोई, और एक बार माता जी इसमें, 3 बार हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए और स्मरण कीजिए। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम था अधर्म। अधर्म, देखिए ये सृष्टि की रचना का वर्णन है। तो अब इसमें सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे ये पाप करने की प्रवृत्ति, कैसे ये अधर्म करने की प्रवृत्ति, गलत काम करने की प्रवृत्ति कैसे आ गई। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अधर्म, और अधर्म ने विवाह किया झूठ से, झूठ असत्य, अधर्म असत्य, फॉल्सिटी। इसको हम बाद में समझाएंगे भी आपको। जैसे ब्रह्मा जी ने अधर्म क्यों उत्पन्न किया बताइए, ब्रह्मा जी चाहते तो अधर्म को उत्पन्न नहीं करते, केवल धर्म ही धर्म होता, सब लोग अच्छे होते, कोई पाप नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, कोई हत्या नहीं करता, कोई धोखा नहीं देता। क्या कारण था अधर्म को जन्म देने का ब्रह्मा जी का? कारण ये था कि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत, इसमें व्यक्ति इन्हीं चीजों में फंसकर कष्ट पाता है। और जब बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं जीवन में, कई जन्मों के कष्ट बढ़ जाते हैं, तब भगवान की ओर मुड़ता है। तो अधर्म का उद्देश्य भी भगवान की भक्ति है। अधर्म कष्ट इस जगत में जितने भी दिए गए हैं ताकि व्यक्ति तंग आकर भगवान के पास आए। तो ब्रह्मा जी से अधर्म उत्पन्न हुआ, अधर्म ने असत्य से विवाह किया झूठ से, और उन दोनों के विवाह से जो पुत्र हुए उनका नाम था दंभ और माया। एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई, पुत्र का नाम था दंभ, पुत्री का नाम था माया। अब इसको कैसे समझना चाहिए, ब्रह्मा जी ने अधर्म को उत्पन्न किया और फिर जो सारी बुरी चीजें हैं, सारे दुर्गुण हैं, सारे पापपूर्ण कार्य हैं, अब वो अधर्म से आते हैं। इसका अर्थ क्या है, जब व्यक्ति धर्म को भूल जाता है, जब व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तब फिर असत्यता और फिर दंभ और माया। दंभ मतलब अहंकार, दंभ मैं श्रेष्ठ हूं। तो जब व्यक्ति अधर्म करता है, असत्य का सहारा लेता है, सत्य से दूर चला जाता है, कृष्ण से दूर, कृष्ण परम सत्य हैं, जब उनसे दूर जाता है तब फिर दंभ और माया। तो दंभ और माया, माया मतलब मोह, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति समझना, अपने आप को इस शरीर समझना, ये भी मोह है हम सबका। इसीलिए हम शरीरों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, जब तक अपने आप को शरीर मानते हैं एक दूसरे शरीर के प्रति आकृष्ट रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो इन शरीरों में है क्या, हड्डी, मांस, खून, यही सब भरा हुआ, केवल पैकिंग अच्छी है बस। अंदर क्या है, आप किसी भी व्यक्ति को काटिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति को काटिए, अंदर क्या है, वही है, वही गंदगी है। और ये सारी चीजें अशुद्ध मानी गई हैं। आप अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं, आपका गलती से हाथ कट जाए तो आपको सेवा करने की अनुमति नहीं है भगवान की, विग्रह की। क्यों, क्योंकि खून अशुद्ध है। हड्डियां, आप कहीं किसी को जलाने जाते हैं, हड्डियों का स्पर्श कर लें, आपको घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, अशुद्ध है। हड्डियां अशुद्ध हैं, खून अशुद्ध है, ये मांस अशुद्ध है, लेकिन केवल उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है तो हम लोग बड़े आकृष्ट हो जाते हैं उसकी ओर। तो क्यों ये शुद्ध है, अगर ये सारी चीजें अशुद्ध हैं तो हम इन्हीं सारी चीजों के साथ भगवान की सेवा कैसे कर लेते हैं। आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति है, जब तक आत्मा उपस्थित है इस शरीर में, ये शरीर शुद्ध है। जैसे ही आत्मा त्याग देती है अशुद्ध हो जाता है। तो दंभ और माया ये दोनों प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी से सबसे पहले, हाँ नहीं नहीं वो हो गए, अभी पतन के मार्ग में अधर्म, और अधर्म ने विवाह किया असत्यता से, असत्यता और अधर्म से फिर उत्पन्न हुए एक पुत्र और एक दंभ, और अब दंभ और माया ने विवाह किया और उनसे प्रकट हुए लोभ और निकृति। लोभ आप सब जानते हैं, लोभ मतलब लालच। इस जगत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको किसी चीज का लालच नहीं हो। हम सबको किसी न किसी, किसी को धन का लालच होता है, किसी को सत्ता का लालच होता है। आप में से ऐसे कोई हैं जिनको कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है किसी चीज का, धन का नहीं, सत्ता का नहीं, मान सम्मान का नहीं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लालच, लोभ होता है हृदय में। और लोभ और निकृति, निकृति मतलब बहुत कपटी होना, कपट। निकृति यानी कपट होना हृदय में। कपटी व्यक्ति जानते हैं आप, कपटी किसको कहते हैं, जिसके मन में कपट होता है, यानी वो बाहर से बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखाता है, अरे अरे आपको देखकर आनंद आ गया, आपको देखकर मेरा जीवन सफल हो गया, मन में कहता है इतना बेकार आदमी है तुम सामने क्यों आया, आना नहीं था, ये कपट है ना। बाहर से कुछ और दिखाते, अंदर से कुछ और होता। ऐसे कई बार होता है ना, किसी के घर में जाइए तो बड़ा मुस्कुरा कर आपसे कहता है बहुत अच्छा लगा आप आए, और मन में सोचते अभी आना था, अभी जस्ट बाहर जा रहा था मैं, कितना जरूरी काम था। तो ये कपट है, निकृति। तो दंभ और माया से लोभ और निकृति प्रकट हुए, और फिर लोभ और निकृति से क्रोध और हिंसा। ये देखिए, अगर हम लोग इसको देखें, दरअसल इसको मिटा के कोई लिख सकता, किसका हैंडराइटिंग अच्छा है हिंदी का? हिंदी कौन अच्छा लिखते हैं? कोई नहीं। ये किसने लिखा है? आज इसको मिटा के ना, नहीं नहीं मत करो, फिर सबको पता चल जाएगा। हाँ बैठो बैठो, इसके बाद जब आप लोग बता देंगे एक एक बार फिर लिखेंगे इसको, तब लिख देना। हाँ ध्यान से। तो ये पतन का मार्ग है कि जब व्यक्ति अधर्म में लगता है, मोह में पड़ जाता है, दंभित हो जाता है, लोभ बढ़ जाता है हृदय में, और लोभ के कारण क्रोध और हिंसा प्रकट होती है। जब व्यक्ति को बहुत लोभ होता है, सब कुछ अपने लिए चाहता है और नहीं मिलता, तो क्रोध प्रकट हो जाता है, व्यक्ति क्रोध कर बैठता है। तो क्रोध और हिंसा, क्रोध में क्या होता है? हिंसा, मारते हैं। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो मारता है ना, कम से कम जोर से तो चिल्लाता ही है, देख लूंगा तुम्हें, जैसे कभी देखा ही नहीं, इतने दिन से तो देख रहे हैं, उन्हीं से झगड़ा करते फिर कहते देख लूंगा तुम्हें। एक बार ऐसी एक कथा है कि एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था और एक बहुत दुबला पतला व्यक्ति, दोनों का झगड़ा हो गया। आप सोचिए क्या होगा, ये व्यक्ति इतना पतला था कि अगर फूंक मारे तो उड़ जाएगा, और वो दूसरा इतना शक्तिशाली, तो शक्तिशाली व्यक्ति ने एक थप्पड़ मारा उसको, धाड़ जाके उधर गिरा। लेकिन उसके अंदर इतना गुस्से से आके बोलता है, अब की बार अगर तूने मारा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने कहा अच्छा, उसने और एक थप्पड़ मारा, धाड़ घर, और फिर जाके गिरा, फिर फिर आके गिरा, अब की बार अगर तूने मुझे मारा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने फिर और एक मार दिया थप्पड़। तो ये क्रोध और हिंसा, क्रोध आने पर थप्पड़ खा रहे चले जा चुपचाप, भाई हो गया ना, उसको क्रोध आ गया, अब की बार तुम्हें दिखाऊंगा। क्या दिखाओगे, इतने से तो हो, फूंक मारेगा वो उड़ जाओगे आप। अभी हम बंबई में थे तो एक जगह हमने देखा कि झगड़ा हो गया, आजकल बहुत झगड़े, इतनी इतनी बात पर। हम अंदर घुस रहे थे एक स्थान पर, तो वहां पर सब पुलिस भी लगी हुई है, पुलिस वाले खड़े हैं, और दो लोग झगड़ने लग गए, इतना झगड़ा, सामने खड़े हैं तो एक अंदर खड़ा था, एयरपोर्ट था, तो एक अंदर खड़ा था एक बाहर खड़ा था, तो बाहर वाला जो अंदर वाला एयरपोर्ट का एम्प्लॉय था, तो दोनों में झगड़ा हो रहा है, गालियां हो रही हैं बहुत बुरी तरह, और फिर वो अंदर वाला बोलता है मैं देखता हूं तेरे को बाहर आकर देखता हूं, तो वो बोल रहा था अरे मैं तो खड़ा ही हूं ना, बाहर आके देख लो अभी। बहुत हमें बड़ी हंसी आ रही थी, पुलिस वाले भी खड़े होकर सब देख रहे थे आराम से। तो ऐसे लोगों को झगड़ा, क्रोध और हिंसा प्रकट हो जाती है। तो क्रोध और हिंसा से फिर प्रकट होते हैं कली और दुरुक्ति। कली और दुरुक्ति, दुरुक्ति, दुरुक्ति मतलब, उक्ति मतलब कहना, और दुरुक्ति मतलब बहुत कठोरता से कहना। ये कली युग का लक्षण है, कोई प्रेम से बात नहीं करता, है ना। जब क्रोध और हिंसा में होते तो क्या प्रेम से बात करते हैं? वो कहते हैं क्या, आपको मैं बाहर देख लूंगा, आप बाहर आइएगा मिलिएगा, ऐसे बोलते, देख लूंगा तेरे को बाहर, समझता क्या है ये वो, और मुंह से सारे शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं, कई कई जन्मों के जो इकट्ठा किए हुए हैं सब धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो दुरुक्ति, तो कली और दुरुक्ति का जन्म हुआ। अब हम पतन का मार्ग देखें, खैर थोड़े और हैं उसको पूरा कर ले। कली और दुरुक्ति से फिर आती है मृत्यु और भीति। जब कली का प्रभाव होता है, हम बुरे शब्द कहते हैं, तो उनकी संतानें हुई मृत्यु और भीति। भीति यानी डर, भीति, भीति डर, भय। तो मृत्यु और भय, और मृत्यु और भय से उत्पन्न हुए अंतिम दो यातना और निरय, निरय याने नरक और यातना याने कष्ट, निरय। तो देखिए, शुरुआत हुई अधर्म से और अंत हुआ नरक में, ये हमारे पतन का मार्ग है। तो कैसे पतन होता है? अधर्म से प्रारंभ होता है, अधर्म के कारण व्यक्ति असत्य का मार्ग ले लेता है, सत्य को त्याग देता है, परम सत्य श्री कृष्ण को त्याग देता है। और असत्य का मार्ग क्या है? असत्य के मार्ग का एक ही सिद्धांत है, और वो क्या है? चीजों को पाना, चाहे कैसे भी हो, झूठ बोलो, चोरी करो, डाका डालो, असत्य। इसीलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है। कभी कभी भक्त प्रश्न करते हैं, क्या भगवान की सेवा के लिए झूठ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? अभी सब सोच रहे हैं हाँ या ना। बोल सकते हैं, झूठ बोलना चाहिए भगवान की सेवा के लिए? आप किसी से डोनेशन मांगने जाएं और आपके मंदिर में जन्माष्टमी पर केवल 500 लोग आते हैं, और आप बोले हमारे मंदिर में 200,000 लोग आते हैं, बोले भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए थोड़ी बोल रहे हैं, सही है कि नहीं? सही है? नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। असत्य कौन बोल सकता है? बोला है, आचार्यों ने बोला है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आचार्यों ने असत्य बोला है भगवान की सेवा के लिए। लेकिन कौन बोल सकता है? जो पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान को, जिसके सारे कार्य भगवान के लिए हैं, अगर वो कभी बोल देता है, वो भी कभी, हर रोज नहीं। जैसे एक उदाहरण है, एक आचार्य थे, उन्हें मंदिर बनवाना था, तो उन्होंने 6 चोरों को इस्तेमाल किया पैसा इकट्ठा करने के लिए। डोनेशन नहीं आ रहा था, क्या करें, भगवान का मंदिर बनाना था। अच्छा, आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप सोचे हाँ कारवार में भी मंदिर बनाना है, ढूंढे 6 चोरों को, और उन्होंने बड़े विशेष चोरों को इस्तेमाल किया। एक चोर जो बहुत जल्दी ताला खोल देता था, दूसरा चोर जो कहीं से भी ऊपर चढ़कर निकल सकता था, ऐसे बहुत सारे चोरों को इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, जब मंदिर के लिए पैसा आ गया सारा, तो उन चोरों को डुबाकर मार दिया पानी में। अब वो कर सकते थे क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पित थे, 1 रुपया भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हमें, हम ना तो कोई बहुत बड़े आचार्य हैं और ना ही इतने महान समर्पित भक्त हैं कि हम बोलें कि हम भगवान के लिए झूठ बोल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होगा, आज आप 1 झूठ बोलोगे भगवान के लिए, कल 2 बोलोगे, फिर 4, और फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर सत्य बोलोगे ही नहीं। आप देख लीजिए, आप याद कीजिए कि ऐसा होता है, जब हमें आदत हो जाती है झूठ बोलने की, हम सत्य बोलना छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। और आजकल तो झूठ बोलने के लिए बहुत सुविधा है, मोबाइल फोन, व्यक्ति घर में बैठा होता है, फोन आता है, कहां पर हो आप? अरे अभी मैं ट्रेन में हूं, जरा कहीं जा रहा हूं, कल फोन करता हूं, अब मैं शहर में नहीं हूं, है ना। इतनी आदत पड़ जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को लैंडलाइन पर फोन किया, उसने फोन उठाया, और जब भी पता चला कि उस व्यक्ति का फोन है, तो उसने कहा अरे अभी मैं जरा ट्रैवल कर रहा हूं, मैं बाद में फोन करता हूं। व्यक्ति ने कहा प्रभु जी लैंडलाइन पे बात कर रहे हैं, घर में लगा हुआ है फोन। आदत हो जाती है झूठ बोलने की, तो हम हर जगह झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं। कहते मंदिर क्यों नहीं आए, अरे वो कोई घर में आ गया था, बहुत कुछ थोड़ा तकलीफ था, कोई नहीं आया होता, आदत है बस। बोलते नहीं कि नहीं हम सो रहे थे, बोल सत्य बोलेंगे तो व्यक्ति क्या सोचा, अरे सो रहे थे हाँ, तो इसलिए अरे नहीं कोई घर में आ गया था, जरा ये था वो, आदत पड़ जाती। इसलिए कभी सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य को सहारा नहीं लेना चाहिए। असत्य का सहारा तब लेना चाहिए जब उससे आप किसी के प्राणों को बचा रहे हैं। हम कई बार उदाहरण देते हैं, आप यहाँ दरवाजे पे खड़े हो, अचानक कोई भागता हुआ आता है, बचाओ बचाओ, वो लोग मुझे मार देंगे, और छुप जाता है अंदर, और पीछे से कोई व्यक्ति तलवार या बंदूक लेकर आता है, ए तुमने किसी को देखा? अब आप क्या बोलोगे, सत्य? हाँ, इधर गया अंदर, मारो जाके उसको। या असत्य, युधिष्ठिर महाराज से कहा गया था असत्य बोलो। पता है आपको, युद्ध के समय भीम ने वध कर दिया अश्वत्थामा का, जोर जोर से चिल्ला रहा मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम बताओ, क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, बताओ। तो युधिष्ठिर भी घबरा गए, क्योंकि यहां कृष्ण खड़े हो बोल रहे थे झूठ बोलो, और यहां उनका पूरे जीवन भर की साधना, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कैसे उसको त्याग दें। तो उन्होंने एक मार्ग निकाला, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया नर या हाथी मुझे नहीं पता। तो कृष्ण जानते थे कि ऐसा ही करेंगे, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, जब तक बोल रहे थे तब तक कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया, और द्रोणाचार्य ने एक ही चीज सुनी अश्वत्थामा हतः, मारा गया बस। उन्होंने ये नहीं सुना नरो वा कुंजरो वा। वैसे एक स्थान पर महाभारत में यह भी वर्णन है कि दरअसल शंख नहीं बजा था, युधिष्ठिर महाराज ने पहला वाक्य जोर से बोला और दूसरा बहुत धीरे से बोला अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, पता ही नहीं चला क्या। तो द्रोणाचार्य ने नहीं सुना, ऐसा भी वर्णन है। तो देखिए ये उदाहरण है कि जहां असत्य को कहा गया धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन अन्यथा हमें असत्य बोलने से दूर रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। बहुत अच्छा जीवन है अगर हम सच बोलना शुरू करें, या जीवन में केवल सच बोलें, कभी हमें भय नहीं होगा। असत्य बोलते इसलिए डर लगता है कि कहीं किसी को पता चल जाएगा, और फिर उसको छुपाने के लिए और एक असत्य, जैसे कोई मोबाइल से आपसे बात करे, भाई कहाँ हो, तो नहीं अभी मैं दिल्ली में हूँ, आप कारोबार में घर में बैठे, बोले दिल्ली में हूँ, अच्छा ठीक है मैं ना आपके घर में आ गया हूँ, बस बाहर ही खड़ा हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ, जरा उनको बोलो मुझे ये दे दे, बोले घर में अंदर बैठे हुए हैं दिल्ली के, तो अब बोले नहीं 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 घर में कोई है नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारे आपको कारण देने पड़ेंगे, बोले नहीं मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ ताला नहीं लगा, अरे नहीं नहीं कोई नहीं जाओ वहां से, कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए सत्य का सहारा, हमेशा सत्य बोलना, प्रयास करना, उसमें कष्ट होगा, सत्य बोलने में बहुत कष्ट होते, झूठ बोलना बहुत आसान है, झूठ बोलकर व्यक्ति बड़ी जल्दी से बच जाता है ना, किसी ने कहा तुमने ये किया, नहीं मैंने नहीं किया, खत्म हो गई बात, लेकिन आपको हाँ मैंने किया, मुझसे गलती हो गई, तो हो सकता है कोई दंड मिले आपको, हमें तैयार रहना चाहिए। इसीलिए प्रयास करना है सत्य बोले, और जब हम असत्य का सहारा लेते हैं तो दंभ हृदय में, फॉल्सिटी झूठा हमारे अंदर सब माया, क्योंकि माया मतलब असत्य, जो नहीं है वो माया है, और इस तरह हमारा पतन होते होते फिर हम हिंसा करने लगते हैं, क्रोध आ जाता है, कली का प्रभाव बढ़ जाता है, हमारे शब्दों में आ जाता है दुरुक्ति, हम बोलने लगते हैं बड़े ही कठोर शब्द बोलते हैं, और फिर अंत में हमारे लिए यातना, यातना अर्थात आपको बताते हैं बहुत अच्छी बात शास्त्रों में कही गई है कि व्यक्ति को जब यातना देनी होती है तो उसको नरक में ले जाते हैं। नरक बहुत अच्छा जगह है, बहुत बढ़िया जगह है नरक, अंतिम निरय। तो जब व्यक्ति मृत्यु होती है तो शरीर से बाहर निकालते हैं उसको, और उसको एक यातना शरीर देते हैं। यातना शरीर हमारे इस शरीर से बहुत अच्छा है, हमारे इस शरीर में हम ज्यादा कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं, है ना, समझिए आपको लटका कर रख दें दो दिन तीन दिन, जीवित रहेंगे मर जाएंगे, सहन नहीं कर पाते। एक उदाहरण है, एक बार एक माउंटेन चढ़ने वाला था, पर्वत चढ़ने वाला चढ़ रहा था, रात का समय हो गया, अंधकार हो गया, रस्सी बांधे हुआ था पांव में, अचानक ऊपर से गिर गया नीचे और बीच में ही लटक गया। अब वो लटका हुआ है, उसके पांव में रस्सी है, उल्टा लटका है, और उसने भगवान से प्रार्थना की भगवान बचाओ बचाओ। और अचानक उसको आवाज सुनाई दी, तुम बचना चाहते हो? हाँ, फिर चाकू लो और ये जो रस्सी है उसको काट दो। बोला अरे पागल पागल हूं मैं, आधा लटका हुआ हूं, रस्सी काट दूंगा तो सर फूट के मर जाऊंगा। अंधकार हो चुका था। तो कैसे आप बोल रहे हो? भगवान ने कहा देखो अगर तुम्हें विश्वास है मेरे ऊपर, मानते हो मुझे, मानते हो? बोले हाँ विश्वास है, हाँ रस्सी काटो। बोला वो विश्वास नहीं है। ठीक है, भगवान ने कुछ नहीं, रात भर पड़ा रहा और पर्वत पे था, ठंड थी, जम गया। अगले दिन सुबह उसके मित्र उसको ढूंढते हुए आए तो देखा कि लटका हुआ है, मर चुका है, ठंड के कारण मर गया। और लटका हुआ कहाँ पर था? जमीन से केवल 2 फुट ऊपर, केवल 2 फुट ऊपर था। अगर भगवान की बात मानकर रस्सी काट दी होती तो जिंदा बच गया होता था। तो श्रद्धा नहीं है। तो मान लीजिए ऐसे होता है कि आप लटके हुए, तो ये शरीर ज्यादा सहन नहीं कर पाता। लेकिन यातना शरीर बहुत बढ़िया शरीर है, उसमें आपके शरीर को काटा जाता है उधर से अंदर, किडनी, पैनक्रियस, आपका लीवर, हार्ट सब निकाला जाता है। आप देखते हैं वाह ऐसे जा रहा है, मेरा किडनी चली गई, ये मेरा पैनक्रियस चला गया, ये क्या है? बोले लीवर है। अच्छा लीवर चला गया, आप देखते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होती। कितना बढ़िया शरीर है ना। कष्ट वही होता है जो कष्ट इस शरीर को काटने में होता है, वही कष्ट होता है, लेकिन मरते नहीं, केवल कष्ट सहते। भागवत ने तो ये भी लिखा है कि आपके उस शरीर से आंखें निकाल ली जाती हैं आपकी, और आप देखते हो आंखें जाते हुए, अपनी ही आंखें निकालते हुए। इतना बढ़िया शरीर है, तो उसको यातना कहते हैं। तो फिर यातना से निरय, तो ये हमारे पतन का मार्ग है। अधर्म, असत्यता, ये सारे पतन की चीजें हैं। दंभ, माया, क्रोध, हिंसा, कली और दुरुक्ति, ये सब हमारे पतन के मार्ग हैं। और इसको मैत्री मुनि विदुर से कहते हैं। अब इसके बाद वो ध्रुव महाराज की कथा को प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए अब आप लोग बताइए, एक प्रभु जी और एक माता जी, कि ये जो हमारे पतन का मार्ग है, इसको खाली शब्द मत बताइए, थोड़ा समझा समझा के, कि अधर्म से असत्यता आती है, फिर असत्यता के कारण हमारे हृदय में लोभ हो जाता है, और लोभ से फिर हम इत्यादि इत्यादि। कौन बताएंगे? प्रभु जियों में, हाँ पूनम प्रभु, यस बोलिए, थोड़ा जोर से बोले, सबको सुनाई देना थोड़े। अधर्म किसके पुत्र, वहां से शुरू कीजिए, ब्रह्मा जी से। अधर्म, हाँ झूठ, ओके, अधर्म और झूठ से मिलकर दंभ और माया प्रकट होते हैं, ओके। फिर दंभ और माया से लोभ और क्रोध तो बाद में आता है उनको, आपका भी समय आएगा, शांत रहिए। लोभ और एक रह गया, क्रोध हिंसा बाद में है। दो, एक पुत्र एक पुत्री, लोभ और निकृति, निकृति, ओके। हाँ आगे बोलिए, उन दोनों से फिर क्रोध और हिंसा, कली और, यानी आप लोग सब मत बोलिए, एक ही, कली और दुरुक्ति। दुरुक्ति का मतलब क्या है? दुरुक्ति मतलब क्या है? उक्ति यानी कहना, दुरुक्ति यानी बुरे शब्द कहना, बस सरल। हाँ, और फिर मृत्यु और भीति, भीति भय, हाँ, यातना और निरय, वेरी गुड। हाँ अभी माता जीओं में आप लोग बहुत बीच बीच में बोल रहे थे, अभी कौन बताएंगे? हाथ ऊपर कीजिए, कौन इसको समझा सकते हैं? कोई नहीं, ओके। सीताली आप बताओ, इनको माइक की आवश्यकता है, थोड़ा जोर से। हाँ, ब्रह्मा जी से अधर्म उत्पन्न हुआ, अधर्म और असत्य से दंभ, दंभ और माया। हाँ, और दंभ और माया से लोभ और निरुक्ति। हाँ, लोभ और लालच नहीं, लोभ और लालच एक ही चीज है, दंभ लोभ और निरुक्ति। हाँ, और लोभ और क्रोध और हिंसा किससे प्रकट हुए? लोभ और निरुक्ति से, निकृति से। और क्रोध और हिंसा से कौन प्रकट हुए? कली और दुरुक्ति। दुरुक्ति मतलब कठोर शब्द। वेरी गुड। और मृत्यु और भीति, और मृत्यु और भीति से यातना और निरय। वेरी गुड। अभी तीन बार हो गया, आप सबके जितने भी पाप हैं वो सब कट गए। अभी बाद में इसको यहाँ लिखना, पूनम प्रभु इसको साफ करके अभी भी लिख सकते हो। तो आपके पास लिखा हुआ है? ठीक ठीक, या ठीक है बाद में कर देना, नहीं तो अभी सारा ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा केंद्रित, कृष्ण को भूल जाएंगे थोड़े समय के लिए। क्लास के बाद लिख देना ताकि याद रहे सबको। तो ये पतन का मार्ग मैत्री मुनि ने दिया। तो देखिए, जीवन में धर्म का पालन करना कितना आवश्यक है। आधुनिक समाज में कली के प्रभाव के कारण अपने आप को हम भगवान से दूर ले जाते हुए, धर्म से दूर ले जाते हुए गर्व महसूस करते हैं। आजकल लोग गर्व से कहते हैं, मैं भगवान को नहीं मानता। बोल, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से, क्योंकि जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप यहां बैठकर कहिए कि मैं उनको नहीं मानता, आप मत मानिए, क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो है ही। ऐसे ही लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से भगवान को, इनके कहने से वो भगवान नहीं बने हैं, वो तो भगवान है ही, लेकिन नुकसान हमें होता है। इसीलिए धर्म का पालन बहुत आवश्यक है। और धर्म क्या है? अभी हमने अधर्म सुना कि अधर्म में ये होता है, हिंसा, क्रोध, असत्यता, दंभ इत्यादि, ये सब अधर्म के लक्षण हैं। तो धर्म क्या है? सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म वो है जो भगवान बनाते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने दिया वो धर्म है, इसीलिए हमें उस धर्म का पालन करना है। तो सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सभी लोगों के लिए एक ही धर्म है, सवै पुंसा, सभी लोगों के लिए एक ही धर्म है, और वो है भक्ति भगवान की। ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है कि भक्ति करनी है अधोक्षज। अधोक्षज अर्थात जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते भौतिक आंखों से, अधोक्षज, उनकी भक्ति करनी है। तो किसी ने ये प्रश्न किया था एक बार कि अरे देखिए, इसमें कृष्ण का नाम तो है नहीं, आप कहते हैं कृष्ण की भक्ति करना है, आपके ही भागवत में कहां कृष्ण का नाम है? सवै पुंसा परो भक्ति, ये सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, यतो भक्ति कृष्ण जे नहीं लिखा है, तो फिर आप क्यों कहते हैं? तो हमने उनसे कहा, आपने भागवत पढ़ी है? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा ये भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है, जो कहता है यतो भक्तिर अधोक्षजे, और सूत गोस्वामी ने जब ये श्लोक कहा वो जानते थे कि आप जैसे लोग होंगे आगे जो ये प्रश्न करेंगे, अरे इसमें कृष्ण का नाम क्या है, कहाँ है। इसीलिए छठे श्लोक के बाद तुरंत सातवें श्लोक में उन्होंने कहा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। कौन है वो अधोक्षज? वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। तो भक्ति केवल कृष्ण की हो सकती है। देवी देवताओं से व्यापार होता है, हम उनके पास कुछ जाते हैं कुछ मांगने के लिए, जब तक वो देते रहते हैं हम उनके ऊपर नारियल दूध जो भी है चढ़ाते रहते हैं। जिस दिन देना बंद कर देते हैं हम मंदिर शिफ्ट कर लेते हैं। हमारे मंदिर इस तरह नहीं है। इस्कॉन मंदिर में आकर आपको क्या मिला है मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को धन की प्राप्ति हुई मंदिर आकर? किसी को मिला? बहुत सारा धन मिल गया इसलिए मंदिर आ रहे हैं। क्या मिला इस्कॉन में आकर बताइए? आरपी सिंह को क्या मिला? हाँ मतलब कुछ धन वन मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला, उल्टा चला गया संडे स्पॉन्सर करने में। है ना, बाकी मंदिरों में जाके हम लोग मांगते हैं कुछ दे दो दे दो, और कुछ मिल जाता है। हाँ इस्कॉन में क्या मिलता है? उल्टा आते ही मरेट किचन डिपार्टमेंट वालों, चलो संडे स्पॉन्सर करो, ये फेस्टिवल आ रहा है वो फेस्टिवल आ रहा है, पैसा दो, भगवान की ड्रेस लानी है, भगवान के लिए ये लाना है, तो हम लोग तो दे देते, चला जाता है, कम हो जाता है, मगर फिर भी हम आते आते रहिएगा फिर भी। तो ऐसे कोई भौतिक चीज नहीं मिलती हमें, क्योंकि ये व्यापार नहीं है। यहां हम भगवान से व्यापार करने नहीं आ रहे हैं, यहां हम प्रेम करने आ रहे हैं भगवान से, और जिससे प्रेम करते हैं उसको देते हैं। प्रेम अर्थात देना, लेना मतलब व्यापार। जब हम लेने की कामना से कुछ देते हैं वो व्यापार है। जैसे किसी व्यापारी को आप कुछ धन देते हो वो आपको कुछ सोना देता है, व्यापार है। लेकिन भगवान को जब हम देते हैं तो बदले की कोई कामना नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते। ये भी नहीं चाहते कि लोग बड़ा गुणगान करें, अरे अरे फला फला व्यक्ति ने। कभी कभी हमें करना पड़ता है क्योंकि उस व्यक्ति की इच्छा होती, लेकिन हमारे भक्तों की वो भी इच्छा नहीं है। भक्त क्या है? भगवान कपिल माता देवहूति को बताते हैं कि मेरा भक्त वो तो मुक्ति भी नहीं चाहता। चार प्रकार की मुक्तियों का वर्णन करते हैं, वो बोलते मेरा भक्त इनको भी नकार देता है, उसको धाम में भी नहीं जाना है, ये भक्त है। क्योंकि अगर हम ये कामना करते हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए, वो भक्त नहीं है। क्यों नष्ट होना है पापों को? क्या प्रेम है फिर कृष्ण से? हमें केवल प्रेम करना, पाप वगैरह अपने आप नष्ट होते हैं, उसकी हमें चिंता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। एक बार किसी ने हमसे कहा था, हम जप कर रहे थे, जप करते करते माला बाहर आ गई थी जपमाला से, तो किसी ने कहा कि प्रभु जी, तब हमने शुरुआत की थी बंबई में थे, प्रभु जी ऐसे आप जप करते हो ये माला बाहर नहीं आनी चाहिए। हमने कहा क्यों, माला बाहर आने से क्या होता है? तो ने कहा अगर आप थैली के बाहर माला लेके जप करते हो तो आपके जप का जो लाभ है वो देवताओं को चला जाता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो कल से हम बाहर ही जप करेंगे, जाने दीजिए उन लोगों को, अगर हमारी वजह से देवताओं को लाभ हो रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात है, तो और करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे इससे ये मिलेगा, मुझे उससे वो मिलेगा, मैं जपा इसलिए करता हूं कि मेरा लाभ होगा, हाँ मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान को, आप ये सारे ब्रह्मांड को मुक्त कर दीजिए और इन सब के पाप मुझे दे दीजिए। जितने लोग हैं ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड में आप सोचिए, भारत में ही 100 करोड़ के ऊपर लोग हैं, आप भारत छोड़ दीजिए, कारवार में बहुत सारे, कारवार छोड़ दीजिए, यहां जो बैठे हैं उतने ही बहुत हैं। अगर आप भगवान से प्रार्थना करें, मान लीजिए निताई पद्म प्रभु प्रार्थना करें कि यहां जितने भी भक्त बैठे हैं उन सब के पाप मुझे दे दीजिए, ऑफकोर्स करेंगे नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं मैं, तो आप सोचिए इतने लोगों के पाप कितना, कितने जन्म तक हमें कष्ट सहना। प्रहलाद महाराज कहते हैं सारे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं आप सबको ले जाइए अपने धाम, और उनके जो जन्मों जन्मों के पाप हैं वो मुझे दे दीजिए, मुझे नरक में भेज दीजिए, कई कई हजारों लाखों वर्षों तक सड़ने दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये भक्त है, तो इसीलिए भक्तों को कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हम भगवान के पास कुछ मांगने नहीं आना चाहिए, हमें भगवान के पास सेवा के लिए आना चाहिए, प्रेम के लिए आना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, बच्चा कुछ भी कर देता है, छोटा बच्चा होता है उसको गोद में रखते हैं, वो माता पिता कहते हैं ना मेरा लाल मेरा पीला, वो सही में लाल पीला कर देता है सब, लेकिन माता उसको कोई कष्ट नहीं है, है ना। और तो कैसे वो प्रेम से सेवा करती है बालक की, छोटा बालक वो मारता है, आपने देखा कभी कोई बच्चा माँ को मारता है, हमने देखा छोटा सा बच्चा वो जोर जोर से मारने लगता है, माँ चुपचाप ठीक मारता है, कुछ कभी कभी कहता है, कभी क्रोध करता है, कभी रोता है, कभी सब माँ के ऊपर कर देता है, माँ को बिल्कुल चिंता नहीं, वो तो बड़े प्रेम से करती है, वो सेवा करती है। तो इसी तरह हम जब कृष्ण के पास जाएं तो भले ही कृष्ण हमें थोड़ा सा मारें, जैसे बच्चा माँ को मार देता है, अर्थात थोड़े से कष्ट दे दें हमें जीवन में, कोई चिंता नहीं है। हमारे प्रेम की सच्ची परीक्षा यही है कि जब कष्ट आए जीवन में, जब दुख आए, जब अपमान आए, जब हमें कोई प्रतिष्ठा नहीं मिले, जब हमें धन नहीं मिले, जब हमें सुख नहीं मिले, क्या तब भी हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, क्या तब भी हम उनकी पूजा आराधना प्रेम से करते हैं? ये सच्चा प्रेम है। अरे सुख अगर दे रहे हैं और आप उनकी भक्ति कर रहे हैं तो ये कौन सा बड़ा प्रेम है? भगवान आपको सुखी रख रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, जिस दिन कष्ट आ गया भगवान है ही नहीं, नहीं। भक्त को ये सोचना ठीक है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणु भुंजान एवात्मकृतम विपाक, जो कुछ है आपकी कृपा, क्योंकि प्रेम में कामना नहीं होती है, वो सच्चा प्रेम है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और कुछ आशा करते हो, कुछ कामना करते हो, वो प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम क्या है? आप प्रेम कीजिए, वो व्यक्ति आपसे प्रेम करे, आपको दुख दे, आपको कष्ट दे, आपको पाप दे, जो भी दे। आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करो तु वा, ये भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण से आप कुछ भी करो, मुझे अपने पैरों के तले रौन डालो, लेकिन आप मेरे स्वामी। तो हमारी भक्ति की परीक्षा सुख में नहीं होती है, हमारी भक्ति की परीक्षा दुख में होती है। हमारी भक्ति की परीक्षा उस समय होती है जब भगवान हमें कष्ट देते हैं, तब हमारे मन में आता है 20 साल हो गए भक्ति करते हुए, कोई माता जी सोच सकते हैं पिछले 10 साल से राजभोग बना रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं की, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट क्यों? आने दीजिए, कष्ट भगवान की कृपा है, उससे हमारा प्रेम भगवान की ओर और बढ़ना चाहिए। जितने जीवन में कष्ट आए वो हमें भगवान की ओर ले जाएं, हमें लगे कि हाँ भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं क्योंकि आगे जन्म जो मेरे कष्ट मिलने वाले थे वो कम कर रहे हैं। अगर मैंने इस जीवन में कष्ट नहीं लिए तो निश्चित और कई जीवन जीने पड़ेंगे, और आने दीजिए। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं भगवान से कि हे भगवान, कृष्ण जा रहे हैं द्वारका के लिए। कुंती महारानी कहती रुक जाइए, आपने हमें किन किन कष्टों में नहीं बचाया, विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्, मेरे बच्चों को विष पिलाया गया आपने रक्षा की, हमें जलाकर मारने का प्रयास किया गया आपने रक्षा की, और उन सब स्थितियों में मेरा स्मरण आपका बहुत बढ़ गया था, मैं आपको बहुत स्मरण कर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था आप हमारे साथ हैं उन कष्टों में, इसीलिए मेरी प्रार्थना है बारंबार वो कष्ट आए, वही कष्ट, वही विष, वही अग्नि, वही युद्ध, फिर से आए ताकि आपका स्मरण हो सके, क्योंकि अगर आपका स्मरण होता है तो व्यक्ति के भवरोग कट जाते हैं। तो इसीलिए भक्त को यह कामना नहीं करनी चाहिए कि मेरे जीवन में केवल सुख हो, सब कुछ ठीक चले, तब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। भक्त को यह कामना करनी चाहिए भगवान मुझे कैसे भी रखें, मैं उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। हमें यह जान लेना चाहिए कि भगवान हमसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये चीज हमें जाननी चाहिए। यह सच्चा प्रेम है। इसलिए प्रेम की परिभाषा समझिए, प्रेम में मांगा नहीं जाता, प्रेम में दिया जाता है। जो भी है हमारे पास हमें देना, और कुछ कामना नहीं कि इसके बदले में हमें यह मिलेगा, ये प्रेम है। और हम भगवान को क्या दे सकते हैं? क्या हम भगवान को धन दे सकते हैं? कुछ नहीं, भगवान को आवश्यकता नहीं है हमारे धन की, हमारे भोग की, हमारी ड्रेसिंग की, कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को 20,000 पंडे सेवा करते हैं उनकी, 20,000। बताइए ऐसा कोई अमीर आदमी है जिसको नहलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए और कपड़े पहनाने के लिए 20,000 लोग लगते हैं? है कोई ऐसा? जगन्नाथ जी तो जिनकी सेवा वहां 20,000 पंडे कर रहे हैं, क्या कारवार में बैठकर वो हमारी सेवा के लिए भूखे हैं? नहीं, लेकिन वो हमें अवसर दे रहे हैं। तो हम सेवा करते हैं तो अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं किसी भी तरह से। हमें सेवा से जुड़ना है, भगवान की सेवा ये ऐसा अनमोल रत्न है हमारे लिए कि अगर एक बार चला गया हमारे हृदय से, हमारे जीवन से, तो फिर कई कई जन्मों तक हमें यह अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए, यह सच्चा प्रेम है। जैसे हम माता का उदाहरण दे रहे थे, एक बालक होता है, रोता है रात में 12 बजे 1 बजे तंग करता है, माँ उसकी सेवा करती है, प्रेम है। इसीलिए बच्चा कुछ नहीं देता माँ को, क्या मिलता है छोटे बच्चे की सेवा करके माँ को? कुछ नहीं, प्रेम है। केवल कष्ट देता है बच्चा, रात को सोने नहीं देता इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे कष्ट, माँ प्रेम से सेवा करती। तो ऐसी सेवा, ऐसा प्रेम हमें भगवान से करना है। तो ऐसे ध्रुव महाराज की कथा को प्रारंभ करना है। ध्रुव महाराज की कथा से हम लोग वैराग्य सीखते हैं, श्रद्धा सीखते हैं, तपस्या सीखते हैं, कष्टों से दूर जाने के मार्ग को सीखते हैं, और चेतना को ऊपर उठाने के प्रक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समय के लिए रुकेंगे ताकि आप लोग जो बहुत देर से बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत अपने हाथ पांव थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, आप लोग उठ के थोड़ा घूम लें, क्योंकि अब फिर उसके बाद कथा प्रारंभ होगी तो शायद पता नहीं कब रुकेगी। तो इसीलिए थोड़ा समय के बाद इस कथा को जारी रखेंगे। आप में से किसी के कोई प्रश्न है, आपको कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, और ये अच्छा होगा कि ज़्यादा प्रश्न हो ताकि सबको लाभ हो सके। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो कृपया प्रश्न पूछ लीजिए, फिर उसके बाद थोड़े समय के लिए कथा को विराम देंगे और फिर से प्रारंभ होगा। यस, निरय नरक, नरक स्वर्गे वा निरय, एक भजन में कहा गया है कि भगवान आप मुझे कहीं भी रखिए, स्वर्गे वा निरय, स्वर्ग में या नरक में। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी,
कैसे
प्रश्न ऐसा है कि चार संप्रदाय हैं जिनमें से कुमार संप्रदाय भी है। ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार, चार कुमारों, उनको ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने, तो अगर वो ब्रह्मचारी बन गए तो आगे कैसे उनका संप्रदाय कैसे बढ़ा, यही प्रश्न है ना। संप्रदाय का अर्थ ये नहीं होता कि पिता पुत्र को ज्ञान देता है, संप्रदाय का अर्थ होता है कि गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। और ये जरूरी नहीं है कि उनका पुत्र ही शिष्य हो, चार कुमारों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, तो शिष्य बनाने के लिए विवाह करने की जरूरत नहीं है। सन्यासी शिष्य बना सकते हैं, तो शिष्य बनाने के लिए तो कोई विवाह की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो संप्रदाय हैं, चार संप्रदाय, ये पारिवारिक संप्रदाय नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद को जो उनके पुत्र है, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि सारे उनके पुत्र हैं, वो जिसको भी ज्ञान देंगे वो उनसे ही आए हुए हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, लेकिन नारद केवल उनके पुत्र ही नहीं, उनके शिष्य भी हैं। और फिर जब नारद ने व्यास को दिया तो नारद मुनि के तो पुत्र नहीं है व्यासदेव, लेकिन उनके शिष्य हैं। तो ये जो चार संप्रदाय हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, फिर वो शिष्य आगे शिष्य को, ऐसे ही परंपरा चलती है। तो इसीलिए चार कुमारों का विवाह की आवश्यकता नहीं थी। और कोई प्रश्न? अभी कौन कौन से संप्रदाय? चारों संप्रदाय हैं, चार संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और मध्व संप्रदाय। श्री संप्रदाय के लोगों को आप तिरुपति में देख सकते हो, जब आप तिरुपति या अन्य दक्षिण भारत के मंदिरों में जाते हो तो वहाँ वो लोग लगा वहाँ सेवा करते हैं, वो श्री संप्रदाय है। मध्व संप्रदाय को आप कारवार के पास उड़पी में देख सकते हो, वो उड़पी में जो भी मध्वाचार्य जी ने पीठ स्थापित किया वो मध्व संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय है। और रुद्र संप्रदाय आपको गुजरात में मिलते हैं, और जो वहाँ पर कुछ अभी उनके बहुत थोड़े से बाकी हैं, बहुत ज़्यादा वो अभी प्रचार में नहीं हैं। और कुमार संप्रदाय वाले भी आपको उत्तर भारत में काफ़ी मिलते हैं। तो थोड़े थोड़े, जैसे रुद्र संप्रदाय बहुत कम है, कुमार थोड़ा ज़्यादा है, श्री संप्रदाय और ज़्यादा है, मध्व संप्रदाय सबसे ज़्यादा है इस समय प्रचार की दृष्टि से। कौन? कलावती बोल नहीं सकते हैं कौन से संप्रदाय से हैं, ऐसा कहीं स्पष्ट हमने सुना नहीं। शिवजी का नाम लेना जरूरी नहीं है कि रुद्र संप्रदाय। हमने जहां तक उनके विषय में सुना, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा जहां तक उनके विषय में सुना है कि वो कृष्ण की भक्त थी, और उन्होंने किसी गुरु के पास गई जिन्होंने उन्हें मंत्र ओम नमः शिवाय का दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भजन गाए वो सब कृष्ण के ही गाए, कृष्ण की भक्त थी। इसीलिए अभी उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने हरि मंदिर वाले ना कलावती हरि मंदिर बनाते हैं, हमने सुना हरि मंदिर है जिसमें हरि की मूर्ति नहीं है, तो कैसा हरि मंदिर हो सकता है? दरअसल यही होता है, हम लोग किसी व्यक्ति को बहुत मानते हैं, उसके चले जाने के बाद उसको भगवान बना देते हैं, या फिर उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते। ऐसा ही शिरडी में हुआ है। साई बाबा, अगर आप उनके जीवन चरित्र पढ़ें, बहुत स्पष्ट है कि वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। हर रोज भगवद गीता पढ़ना, सबका मालिक एक है, ये सारे उन्होंने ज्ञान दिया। वो मंदिर भी उन्होंने विट्ठल के लिए बनवाना शुरू किया, जिसमें आज शिरडी में जो उनका मूर्ति है, लेकिन आधा मंदिर हुआ था वो चले गए, लोगों ने उन्हीं को भगवान बना दिया। सो इसीलिए ये सब ठीक नहीं है। हमें अगर किसी को मानना है तो उनकी शिक्षाओं को, हम अगर शिवजी को मानते हैं, लोग कहते हैं हम शिवजी के भक्त हैं, तो मानिए जो शिवजी कहते हैं। शिवजी पद्म पुराण में कहते हैं श्री कृष्ण परम सत्य है, भागवत में कहते हैं श्री कृष्ण परम सत्य है, लेकिन हम लोग शिवजी को मानते हैं, उनके जो बोलते हैं वो नहीं मानते, फिर कैसे? बस भांग पीने के लिए, चरस पीने के लिए शिवजी के अनुयायी हैं, वो ऐसे वो कुछ लगाते हैं ना बस, ये तो कोई ठीक नहीं है। अनुयायी मतलब जो उनकी शिक्षाओं को माने, जैसे हम लोग अपने आप को शिला प्रभुपाद के अनुयायी कहते हैं, जो प्रभुपाद ने सिखलाया उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, तो इसलिए बातें हमें जाननी चाहिए। ब्रह्मा जी से अधर्म का जन्म हुआ, हाँ, ये सृष्टि के प्रारंभ में है। तो युग जैसे चार युग होते हैं वो चलते रहते, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं, लेकिन ये जो बात है ये सृष्टि के प्रारंभ में, या फिर जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होता है उस समय, तब जब ब्रह्मा जी फिर से, ब्रह्मा जी को हर रोज रचना करनी पड़ती है, तो तब ये सारी चीजें आती। अधर्म नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ब्रह्मा जी को एक पत्र लिखते हैं, को बोलते हैं कि क्या किया आपने, नहीं जरूरी था, अधर्म भी जरूरी था, नहीं तो धर्म का महत्व पता नहीं चलता। अगर आपको अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश का महत्व पता नहीं चलेगा, है ना। जब यहां पर एकदम अंधकार कर दे तब आप कहते लाइट लाओ लाइट लाओ लाइट लाओ, तो अंधकार में प्रकाश का महत्व पता चलता है। इसीलिए अधर्म होगा तब हम जान सकेंगे कि धर्म कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए अधर्म भी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम सब स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता तब आएगी जब हमें दोनों चीजों में से चुनाव करने की अनुमति होगी। आपके सामने धर्म को भी रखा जाए, अधर्म को भी, आप चुनिए, ये स्वतंत्रता है। आपको केवल धर्म दिया जाए और बोलिए अब चुनिए, तो क्या चुनेंगे, धर्म ही है। तो इसीलिए दोनों आवश्यक हैं। और कोई, हाँ प्रभु जी, चारों को भारत में ही क्यों पैदा किया? ब्रह्मा जी का जन्म भारत में नहीं हुआ, ब्रह्मा जी एक संप्रदाय के हैं, शिव जी दूसरे संप्रदाय के, उनका भी जन्म भारत में नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा संप्रदाय लक्ष्मी देवी से आता है, हमने तो सुना नहीं कि उनका जन्म कारवार के किसी कोने में हुआ हो। और चौथा कुमारों से आता है, वो भी ब्रह्मा जी के लोक में प्रकट हुए, तो कहाँ भारत में जन्म दिया सबको। चारों संप्रदाय बाहर हैं। दरअसल आपको पूछना चाहिए कि इन्होंने चारों भारत के बाहर क्यों किए, एक भी भारत में नहीं दिया, ये प्रश्न होना चाहिए। तो चारों कहाँ, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में हैं, चार कुमार ब्रह्म लोक में हैं, लक्ष्मी देवी आध्यात्मिक जगत में हैं, शिव जी ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए, तो कहाँ भारत में दिया, एक चीज। दूसरा, वैसे भारत में ये जो संप्रदाय हैं ये बढ़े बहुत और अब भी बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि भारत एक पावन भूमि है, तो जो भूमि का प्रभाव होता है, आप जानते हैं कि धर्म करने के लिए भूमि भी बहुत प्रभावी होती, इसीलिए भक्त यात्रा पे जाते हैं। हम लोग तिरुपति गए थे, आप में से कितने लोग तिरुपति आए थे, हाथ ऊपर कीजिए, के बहुत सारे लोग। तो क्यों तिरुपति गए, क्या मंदिर में भगवान नहीं थे, भूमि का। आपने श्रवण कुमार की कथा सुनी है रामायण में, श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे थे और उनके माता पिता अंधे थे, उन्होंने दो टोकरियों में उनको बिठाया हुआ था, उठा के ले जा रहे थे, एक स्थान पर आए, रखा, कहा मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब गए वहां पर तो अचानक उनके मन में आया, अरे मैं क्या अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, मैं युवक हूँ, अभी मुझे काम करके धन कमाना है, परिवार चलाना है, ये मैं अंधों को उठाकर घूम रहा हूँ, तो ये तो ठीक नहीं, पानी नहीं लाए, वापस आ गए। जैसे ही वापस आए उनके मन में फिर से आया, अरे ये मैंने क्या सोच लिया, मेरे बेचारे माता पिता मेरे ऊपर आश्रित हैं और कोई इनका है नहीं, मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा, ये कैसे मन में आ गया, फिर चले गए, फिर वही। तो ये जगह का प्रभाव था, जिस जगह पे उनके मन में गलत भाव आ रहे थे उस जगह पर एक राक्षस को मारा गया था और उसका स्थान था वो, तो जगह का बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए पावन भूमि है भारत भूमि, तो यहाँ पर धर्म अभी भी बचा हुआ है, बाकी जगहों पर महाभारत के युद्ध के बाद समाप्त हो गया। महाभारत के युद्ध के पहले पूरी पृथ्वी पर यह धर्म था, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद एक ऐसा समय आया जहां लोगों को कुछ नहीं पता था, दूर दूर से राजा आए थे लड़ने के लिए, वापस नहीं गए अपने अपने राज्य में, क्योंकि सब मारे गए, उनकी सेना मारी गई, वहां पर सूचना भी नहीं पहुंची कि क्या हुआ, राजा मर गए, क्या हुआ कुछ नहीं पता। तो फिर वहाँ पर चोरों ने राज्य करना शुरू कर दिया, धर्म को बदल दिया। जब चोर राज्य करते हैं तो सबसे पहली चीज़ धर्म को बदलते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग धर्म के आधार पर जान जाएंगे कि ये गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि सारी दुनिया में अलग अलग नियम हैं, धर्म बदल चुका है और भारत में अभी भी बचा हुआ है। इसलिए इन संप्रदायों को आप भारत में अभी भी देख रहे हैं। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, भविष्यवाणी के अनुसार बहुत जल्दी सारी जगत में ये फैलने वाला है। कम से कम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय तो फैलने वाला है, तो इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। और कोई प्रश्न? हाँ जी, फिर से जरा। ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है? हाँ, बाकी सारी देवी देवताओं का। ब्रह्मा जी का है, पुष्कर में है, राजस्थान में। हाँ हाँ, एक और वृंदावन। हाँ, उसका कारण ये है कि नारद मुनि ने एक बार श्राप दिया था ब्रह्मा जी को। ये आपस में बात हो रही थी उनकी, ब्रह्मा जी उनको बोल रहे थे संतान उत्पत्ति करो, बोले नहीं करेंगे, क्रोध में आ गए कि उन्होंने कह दिया आपको जीवन का लक्ष्य नहीं पता। तो इन्होंने कहा रहे मैं तुम्हारा पिता हूँ कि तुम मेरे पिता हो, मैं जो समझा रहा हूँ करो। थोड़ा गुस्से में आ गए, क्रोध में एक दूसरे को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्राप दे दिया, तुम्हें बहुत अहंकार है अपने ब्रह्मचारी होने का, देखना तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। और फिर इधर इन्होंने भी श्राप दे दिया, आप मुझे ऐसा श्राप देते हो, मैं आपको श्राप देता हूँ आपकी कभी पूजा नहीं होगी। तो फिर उनकी पूजा नहीं हो रही। नारद मुनि आचार्य हैं, उनके आदेशानुसार। और नारद मुनि का भी अहंकार टूट गया था, एक नहीं दो नहीं 50 लड़कियों से शादी की उन्होंने, नारद मुनि ने, जानते हैं आप, गंधर्व के रूप में सारा अहंकार टूट गया। तो ये श्राप दिया गया था, इसलिए नहीं होती उनकी पूजा। और वैसे भृगु मुनि ने भी श्राप दिए थे उन्हें, जब भृगु मुनि गए थे एक एक जगह भगवान को पास, अंत में गए थे तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए थे, तो उन्होंने भी श्राप दिया था कि आपकी पूजा नहीं होगी कहीं। तो इस श्राप के चलते अभी उनका कोई मंदिर नहीं है। वैसे ऐसे कई लोगों का मंदिर है। आपने मोहिनी मूर्ति का मंदिर देखा है कहीं? मोहिनी मूर्ति रूप में, देवी के रूप में है हमने सुना है, लेकिन मोहिनी मूर्ति रूप में कोई मंदिर नहीं, बहुत कम है, पता नहीं होंगे शायद। तो ऐसे कई मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी का विशेष इसलिए नहीं है क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ। ठीक है, और कोई प्रश्न? थोड़े जोर से क्या बोल रहे हैं? सरस्वती से शादी किया, श्राप मिला, अच्छा इसलिए पूजा नहीं करते हैं। ओके, वो भी हो सकता है। हाँ, अपनी ही पुत्री से मोहित हो गए, लेकिन ये तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होना चाहिए। शिवजी भी मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे थे, अपने सारे शिष्यों के सामने, सब शिष्य देख रहे क्या हो गया शिवजी को, वो भागे, आकर्षित हो गए। मना किया था भगवान ने, शिवजी ने कहा मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं क्योंकि जब तक आप आए थे मैं चला गया था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमसे देखा नहीं जाएगा, रहने दो। नहीं नहीं, मैं शिव धैर्यवान, ठीक, मोहिनी रूप दिखा, भागने लगे पीछे। तो ऐसे तो शिव जी भी भागे थे, लेकिन पूजा तो उनकी भी होती है, ऐसे अलग अलग कथा है। और कोई प्रश्न किसी के? ठीक है, एकदम शांति है। सो आप लोगों को ठीक लग रहा है यहाँ पर रहना और कथा सुनना? अगले 3 दिन के लिए तैयार हैं? पक्का? अभी भी अगर कोई जाना चाहते हो तो उनके लिए व्यवस्था कर दें कि प्रभु जी बहुत हो गया, 2 ही घंटा बहुत हुआ, अगली बार देखेंगे। हैं कोई? आप सब रहेंगे 3 दिन पक्का? कथा कितनी भी लंबी हो, क्लास कितना भी लंबा हो, भजन चले। हाँ, आप लोगों ने रेस्ट किया सब ने दोपहर को, तो रात को देर तक बैठ सकते हैं ना? ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक दे रहे हैं अनुमति। कितनी देर के लिए चाहिए आपको ब्रेक? पाँव, अच्छा, जिन लोगों को तकलीफ है पाँव में उनके लिए चेयर्स की व्यवस्था है पीछे, बहुत सारी कुर्सियां हैं, इधर नहीं उधर भी हैं, आराम से आप बैठ सकते हैं। तो कितनी देर के लिए ब्रेक करें? हाँ, 15 मिनट ठीक है सबके लिए कि ज़्यादा चाहिए? 15 मिनट, कितने लोग 15 मिनट चाहिए हाथ ऊपर कीजिए, केवल 15 मिनट। अरे बाकियों को ब्रेक नहीं चाहिए, कंटिन्यू करें, या ज़्यादा चाहिए, आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट ठीक है सब लोग को? ओके, अभी 5:40 इस घड़ी में हो रहा है, 6 बजे मिलेंगे, 20 मिनट, लेकिन 6 बजे पक्का आ जाइएगा, आपको सब ढूंढने नहीं जाना पड़े, है ना? हरे कृष्णा। आपके लिए कुछ शायद व्यवस्था की गई है, कुछ जूस वगैरह बनाया होगा तो उसको भी आप ले सकते हैं। पंडिताई पद्म प्रभु बनाया जूस अगर नहीं, अरे रे गलत अनाउंसमेंट हो गया, कट करो उसका। अच्छा, हमें बताया गया था कि शायद बन रहा है लेकिन वो हो नहीं पाया। वैसे यहाँ की व्यवस्था में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रह जाए, लेकिन आप लोग क्षमा कीजिएगा, सब भक्त बड़ा प्रयास कर रहे हैं अच्छी से अच्छी आपको सेवा करने का, लेकिन हो सकता है कमी हो जाए। तो आप लोग एक काम कीजिए, अगले 20 मिनट में जूस नहीं तो पानी तो पीकर आ जाइए, ठीक है? हरे कृष्णा।